नमस्कार मित्रों, सबका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन पर। और मैं लीना महेंद्रे प्रत्येक रविवार की तरह आज भी पठामी संस्कृतम कार्यक्रम लेकर के तुम्हारे लिए उपस्थित हूँ। मित्रों, हम आज के पाठ को थोड़ा सा सरल बनाएंगे, इसीलिए मैंने पूरा अभिवादन भी हिंदी में ही किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम अब संस्कृत में अभिवादन करना सीख गए होगे, जैसे कि नमस्करोमि भो मित्रगणाः, स्वागतम व्याहरामि, शुभम भूयात, स्वागतम अस्तु इत्यादि इत्यादि। और मित्रों, विगत कुछ रविवार हम भगवद गीता के पहले अध्याय को पढ़ रहे थे, तो इसके भी अब थोड़े से श्लोक बाकी हैं, इन्हें लेते हुए हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि अर्जुन कृष्ण से अपने प्रश्न पूछ रहा है। वह कहता है, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम, हे माधव, स्वजनों को मार करके हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वो ये कहता है कि ये लोग तो विमूढ़ हैं, तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोभोपहत चेतसः, अर्थात जिनकी चेतना को लोभ ने मार दिया, ऐसे ये कौरव आतताई हैं। लेकिन हम तो देख सकते हैं, हम तो जान सकते हैं, तो हम क्यों ना इस बात को समझते हैं कि इस लड़ाई से कुलक्षय हो जाएगा और सभी लड़ने वालों को कुलक्षय का दोष भी लगेगा, और कुलक्षय से कई अन्य दोष भी उत्पन्न होते हैं। तो अब अर्जुन उनकी तरफ आता है, इन्हें हम आज देखेंगे। अर्जुन आगे कहता है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो भिभवत्युत। तो इसका अर्थ समझना बहुत कठिन नहीं है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुलक्षये अर्थात जब कुल का नाश हो जाता है ऐसे समय में, तो ये कुलक्षये, यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी है, कुल के क्षय के समय में ये इसका अर्थ है। और प्रणश्यन्ति अर्थात विनष्ट हो जाते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं। क्या क्या? तो कुलधर्म जो हैं वो नाश को प्राप्त होते हैं। जो भी हमारे सनातन कुलधर्म चलते आ रहे हैं, वे सारे के सारे कुल के क्षय के समय में वे सारे कुलधर्म विनाश को प्राप्त होते हैं। आगे कहता है अर्जुन कि धर्मे नष्टे, जब धर्म नष्ट हो जाता है अर्थात धर्म के नष्ट होने के समय में, तो यहाँ फिर सप्तमी विभक्ति लगी है कि धर्मे नष्टे, धर्म के नष्ट होने के समय में कृत्स्नम अर्थात संपूर्ण, संपूर्णतया, तो संपूर्णतया कुल जो है वह संपूर्णतया अधर्म में डूब जाता है, वो अधर्म के भंवर में मान लो फंस जाता है। और इस प्रकार धर्म के नष्ट होने के समय में पूरा का पूरा कुल अधर्म में डूब जाता है, अर्थात जो धार्मिक कुल है वह अधर्मी हो जाता है। और फिर क्या होता है उसका भी अर्जुन अपना डर बता रहा है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अर्थात जब अधर्म में कुल डूब जाते हैं उस समय हे कृष्ण कुलस्त्रियाँ भी प्रदूषित हो जाती हैं, उनका भी धर्म समाप्त होने लगता है। और इस प्रकार जब स्त्रियाँ भी अधर्मी बन जाती हैं, तब हे वार्ष्णेय अर्थात हे वृष्णी कुल में उत्पन्न कृष्ण, जब स्त्रियों का भी धर्म नष्ट हो जाता है, जब वे भी अधर्म में डूब जाती हैं, तो फिर उसके कारण वर्ण संकर हो जाता है। और वर्ण संकर के कारण जो प्रजा या संतति उत्पन्न होती है वह फिर उतनी ज्ञानी, उतनी सामर्थ्यवान नहीं हो पाती है। इस प्रकार अर्जुन का डर है। आगे अर्जुन और कहता है कि फिर वर्ण संकर होने से और क्या क्या होता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो संकर, वर्ण संकर होने से आगे और जो दुष्परिणाम होते हैं उन्हें भी अर्जुन आगे बता रहा है कि इस प्रकार वर्ण संकर होने के कारण जो प्रजा उत्पन्न होती है वह प्रजा संस्कारी नहीं होती है, इसलिए वह कुलघ्न होती है, कुल को समाप्त करने वाली होती है। और चूंकि उस संतति के लिए कुल का कोई अर्थ नहीं रह जाता, तो फिर ऐसी संतति के द्वारा लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडोदक देने की क्रियाएं नहीं हो पाती, वे क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं। इसलिए ऐसे कुल वाले संतति की या ऐसे लोगों के जो पितर हैं वे गिर जाते हैं, पतंती, अर्थात जो पितर अन्यथा स्वर्ग में जा चुके हों वे भी वापस नरक में गिर जाते हैं, क्योंकि पिंडोदक की क्रिया यह वर्ण संकरित संतति नहीं कर पाती है। तो यहाँ पिंडोदक क्रिया का बड़ा ही महत्व अर्जुन गिना रहा है, जिसके कारण पितर स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करते हैं, लेकिन जब संतति वर्ण संकरित हो जाती है तब उसके द्वारा पिंडोदक की क्रिया नहीं हो सकती। इस प्रकार पितरों के लिए भी नरक में जाने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। तो इस प्रकार अर्जुन कहता है कि दोषैरेतैः, इतने सारे दोषों के कारण जो दोष वर्णसंकरकारकैः, जो दोष वर्णसंकर के कारक हैं और उनके कारण कुलों का नाश हो जाता है, और कुल का नाश करने वाले जो लोग हैं उनमें इस प्रकार के वर्ण संकर के कारक दोष पाए जाते हैं या वो उन दोषों से घिर जाते हैं, और फिर उन कुलग्नों के कारण क्या होता है, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः, जाति धर्म और कुल धर्म जो कि शाश्वत समय से चलते आ रहे हैं वे सारे उत्साद्यन्ते अर्थात वे नष्ट होने लगते हैं। मित्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं, यहाँ समाप्त करते हैं, लेकिन मित्रों मैं एक बात, एक विचार तुम्हारे सम्मुख रखना चाहती हूँ कि यद्यपि इतनी बड़ी सेना दोनों ओर इकट्ठी हुई है जिसे सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का विचार केवल अर्जुन के मन में आ रहा है, किसी और को इस प्रकार की चिंता यह इस प्रकार की दुविधा नहीं है, केवल अर्जुन को ही यह दुविधा है, और इसका भी एक कारण है। ये बहुत ही स्वाभाविक स्थिति है जो हर मनुष्य के मन में उपस्थित हो सकती है कि क्या हमें इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए और क्या हमें इस प्रकार स्वबांधवों की हत्या, जिसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, तो क्या हमें वह काम करना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि इस प्रकार का विषाद या इस प्रकार की साशंकता यह अर्जुन के मन में आती है, इसका एक कारण है कि अर्जुन विवेकी पुरुष है, सारासार विचार को करना उसकी आदत है, वही उसकी प्रवृत्ति है, इसीलिए वो इतना सोच रहा है कि मेरे लिए सही क्या है और गलत क्या है। यह विवेक करते समय एक तरफ तराजू में, तराजू के एक पलड़े में उसे दिख रहे हैं कि इस युद्ध से मेरे ही सभी सगे संबंधियों का अंत होने वाला है, जिनकी सुख के लिए, जिनके उपभोग के लिए, जिनके सुख की कामना करते हुए इस लड़ाई के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ, वे ही अगर मारे जाएंगे तो मैं यह युद्ध क्यों करूं। इस प्रकार एक विचार, युद्ध की व्यर्थता अर्जुन के मन में इसलिए उपस्थित हुई क्योंकि वह एक विचार करने वाला व्यक्ति है। तो इस प्रकार का विचार मन में उत्पन्न होना, इसे मैं अर्जुन का दोष या अर्जुन की कमजोरी मैं नहीं मानती, यह उसकी विचारशीलता का एक परिणाम है। वरना बाकी लोग तो आकर के युद्ध में डट गए और शायद कुछ सोच भी ना रहे हों। हाँ, लेकिन अर्जुन का सौभाग्य अवश्य है कि उसकी इस संशय को उत्तर देने के लिए उसके पास सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित हैं। तो इसी आशा के साथ मैं आज का यह कार्यक्रम समाप्त करती हूँ कि हमें भी अपने संशय के समय कोई न कोई सारथी भगवान अवश्य भेज दें, ताकि हमारे भी संशय दूर हो सकें। और मुझे विश्वास है कि तुम अपनी परीक्षाएं समाप्त कर चुके होगे, छुट्टियां मना रहे होगे, इसलिए आज का पाठ भी मैंने थोड़ा सरल रखा, छोटा रखा। लेकिन हाँ, हम अपनी संस्कृत की पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे, और थोड़ी ही सही लेकिन हर रविवार करते रहेंगे। तो आगे भी तुम सुनते रहना पठामी संस्कृतम, सुनते रहना रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहना। नमस्कार।